الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم میرے محترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کئی ہفتوں سے میں قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی ایک آیت کے تحت یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان کو ہر وقت اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کس حد تک شریعت کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے اور اگر کہیں کوئی غلطی اور خامی ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر ہر مسلمان کا فرض ہے. جیسا کہ پہلے بھی بار بار عرض کیا, اسلام کے پانچ شعبے ہیں: عقائد, عبادات, معاشرت, معاملات اور اخلاق. ان پانچوں شعبوں میں انسان کو اپنی زندگی حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق بنانی ضروری ہے. لہذا یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ان شعبوں میں ہم کس حد تک ان ہدایات پر عمل کر رہے ہیں اور کہاں ہم سے غلطی یا کمزوری یا خامی ہو رہی ہے. اس میں عبادات کا میں نے بیان شروع کیا تھا, پھر انشاءاللہ رفتہ رفتہ معاملات اور معاشرت اور اخلاق کی بات بھی بعد میں اللہ نے زندگی دی تو کروں گا انشاءاللہ. عبادات میں سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے, کیونکہ نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا. تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے, ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری نمازیں درست ہو رہی ہیں یا نہیں. الحمدللہ ایک بھاری تعداد مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے, لیکن اس نماز کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور اس کے کیا آداب ہیں, اس سے ہم بکثرت غافل رہتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں کہیں یہ حکم نہیں آیا کہ نماز پڑھو, بلکہ ہر جگہ حکم ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مرد ہیں وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کریں. اگر کوئی شخص تنہا گھر میں پڑھ رہا ہے تو وہ نماز تو پڑھ رہا ہے, نماز قائم نہیں کر رہا جس کا حکم دیا قرآن نے. گھر میں نماز پڑھ لینے سے نماز سر سے تو اتر جاتی ہے لیکن وہ ناقص ہے, ادائے قاصر ہے. لہذا ایک نماز قائم کرنے کا سب سے پہلا تقاضا تو اس نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا. کبھی کوئی شخص اگر اپنے گھر ہی میں جماعت کر لے, مسجد نہ آئے, تو یہ بھی معمول بنانے کی چیز نہیں ہے کہ مستقل معمول یہ بنا لے کہ مسجد میں جانے کے بجائے وہ اپنے گھر میں جماعت کر لے اپنے گھر والوں کے ساتھ. لیکن اگر کسی وقت مسجد کی جماعت چھوٹ گئی کسی عذر کی وجہ سے, عین وقت پر آدمی چاہتا تھا کہ میں مسجد جاؤں لیکن کوئی رکاوٹ پیش آ گئی, وضو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا اور وضو کرنے میں دیر لگ گئی اور اس کی وجہ سے وہ نماز میں نہیں پہنچ سکا, تو اگر ایک رکعت بھی ملنے کی توقع ہو کہ میں ایک رکعت بھی پا لوں گا تب بھی اس کو گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد ہی میں آنا چاہیے. اور گھر میں جماعت کرنا اسی وقت بہتر ہے اور قابل قبول ہے جبکہ مسجد کی جماعت کسی وجہ سے آدمی نہ پڑھ سکا ہو, کوئی عذر لاحق ہو گیا. اگر گھر میں جماعت کرے گا, اس میں یہ بھی آپ کو مسئلہ بتا دوں کہ اگر کسی وقت گھر میں جماعت کرنے کے لیے کوئی مرد موجود نہیں ہے لیکن اپنی محرم عورت ہے, اپنی بیوی ہے, یا اپنی کوئی محرم عورت ہے جیسے والدہ ہیں, کوئی بہن ہے, تو اس کے ساتھ بھی جماعت ہو سکتی ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ عام طور سے اگر دو آدمی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ امام کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی جو ہے, ایک اگر مقتدی ہے تو اس کے برابر میں کھڑا ہوتا ہے, تھوڑا سا ایک اتنا پیچھے ہو جائے کہ ایڑیاں آگے نکلنے کی ضرورت نہ پیش آئے, برابر بھی کھڑا ہو جائے گا تو ہو جائے گی. لیکن اگر مقتدی عورت ہے تو اس صورت میں وہ عورت برابر میں نہیں کھڑی ہوگی بلکہ اس کو پیچھے ہی کھڑا ہونا ہوگا, چاہے وہ تنہا ہی ہو, اکیلی ہو, تب بھی پیچھے ہی کھڑا ہونا. تو یہ ایک عذر کی حالت میں, جبکہ انسان کسی وجہ سے مسجد میں نہ جا سکا ہو تو اس وقت میں یہ دوسرا یہ جائز ہے اس طرح عذر کی حالت میں. لیکن اس کو معمول بنا لینا کہ مستقل طور پر مسجد چھوڑ دی اور گھر میں جماعت کرنے شروع کر دی, یہ معمول بنانے کی چیز نہیں ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسجد, کیونکہ دو فضیلتیں الگ الگ ہیں. ایک فضیلت ہے جماعت کی اور ایک فضیلت ہے مسجد کی. اگر کوئی شخص گھر میں جماعت کرتا ہے تو جماعت کی فضیلت تو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی لیکن مسجد کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. مسجد کا اپنا مقام ہے, مسجد کی اپنی فضیلت ہے, مسجد کے اپنے انوار و برکات ہیں, لہذا مسجد والی فضیلت سے محروم رہنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. तो पहली बात तो नमाज कायम करने के सिलसिले में यह है कि नमाज जमात के साथ मस्जिद में अदा की जाए मर्दों के लिए, और ख्वातीन के लिए यह है कि वो जल्द अज जल्द जो ही नमाज का वक्त हो तो जल्द अज जल्द नमाज पढ़ने की कोशिश करें, उसको आगे टलाएं नहीं। एक तो एक नमाज कायम करने का मतलब यह है। दूसरा मतलब यह है कि नमाज को खुजू व खुशू के साथ अदा किया जाए। आपने दो लफ्ज सुने होंगे, एक खुजू, खा वाद वाओ ऐन खुजू, और एक खुशू, खा शीन वाओ ऐन। इन दोनों का अलग अलग मतलब है। खुजू के माना यह है कि आदमी जब नमाज में खड़ा हो तो उसके आज़ा में आजिजी हो, आजिजी के साथ खड़ा हो, और आजिजी की तफसील खुद नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मालूम होती है। आपका जो अमल था, आदमी को चाहिए कि वो सीखे कि आप किस तरह नमाज पढ़ते थे, उसमें अपने जिस्म के आज़ा को इस तरह रखना जिससे आजिजी का इजहार हो सुन्नत के मुताबिक, उसका नाम खुजू है। मसलन जब आदमी खड़ा हो तो ढीला ढाला होकर खड़ा ना हो, जैसे कि बाज मरतबा वैसे बेतब्बे परवाही के आलम में खड़े हो गए, जिस तरह भी एक पांव पे ज्यादा जोर है दूसरे पांव पे कम है मसलन, और तमाम हरकतें वो नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अंजाम दे। मसलन सबसे पहला काम जब हम नमाज शुरू करते हैं, सबसे पहला काम हाथ उठाना है, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाना है। यहां ये भी अर्ज कर दूं कि जो नियत करना है, नियत ये असल में दिल का अमल है। आदमी के दिल में ये इरादा हो कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो बस नियत हो गई। ये जो बहुत चौड़े लंबे चौड़े अल्फाज बाद अवकात रटवा दिए जाते हैं कि नियत करता हूं मैं चार रकत नमाज जोहर की, मुंह मेरा किबले की तरफ पीछे इस इमाम के, तो ये अल्फाज कहना कोई जरूरी नहीं, ना जरूरी है ना सुन्नत है। ये महज लोगों ने इसलिए बना लिए ताकि इस्तेहजार हो जाए, ध्यान आ जाए कि भाई मैं नमाज पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर ये जबान से ना अदा करें बल्कि सिर्फ दिल में इरादा तो होता ही है नमाज का कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं, तो बस हो गई नियत। इन अल्फाज को जबान से कहने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे मंजर देखे हैं कि इमाम रुकू में है और जाकर आदमी रुकू में शामिल हो सकता है, लेकिन वो पहले खड़ा होके वो पहले ये सारे लटे हुए अल्फाज कहता है कि मैं नियत करता हूँ चार रकात नमाज जोहर की, मुंह मेरा किबले की तरफ पीछे इस इमाम के, इतने वो कह रहा है इतने रुकू से उठ गया इमाम, तो खामखा रकत चली गई। तो ये जबान से नियत करना कोई सुन्नत भी नहीं, जरूरी भी नहीं, और ना इसकी वजह से कोई रकत छोड़नी चाहिए, बल्कि नियत नाम है दिल के इरादे का। जब आप आ रहे हैं नमाज के लिए तो जाहिर है दिल में यही नियत है कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तो नियत हासिल हो गई। इन अल्फाज को जबान से कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, कह ले कोई शख्स ताकि नियत का इस्तेजार हो जाए तो कोई बुरा भी नहीं, कोई नाजायज भी नहीं, बशर्ते कि इतना वक्त हो कि कह सके। अगर इतना वक्त ही नहीं है तो उसको न बरकत छोड़ दे इन अल्फाज की वजह से, ये गलत बात है। लिहाजा नियत तो हो गई, जब आ रहे हैं तो नियत ही है, और जाहिर है कि आदमी सोचता हुआ आता है कि भाई मैं जुमा की नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं जोहर की पढ़ने जा रहा हूं, मैं फजर की पढ़ने जा रहा हूं, तो ये सब कुछ मौजूद है दिल में, वो काफी है। उसके बाद जो सबसे पहला काम है हाथ उठाना, हाथ जो है वो सुन्नत के मुताबिक उठाएं, ये जिस तरह मैं उठा रहा हूं, यानी हाथ की जो हथेलियां हैं वो क़िबला रुख होनी चाहिए, और इस तरह उठाए कि उसकी जो ये अंगूठा है वो कान की लौ के बराबर हो जाए, मिल जाए उससे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मिलना कोई जरूरी नहीं, उसके बराबर हो जाए, बस इस तरह। तो यह सुन्नत का तरीका है कि जब हाथ उठाए आदमी तो किबला रुख, उसकी हथेलियां किबला रुख हों, तो किबला रुख होंगी तो हाथ उठाना दुरुस्त हो गया, सुन्नत के मुताबिक हो गया। अब इसमें लोग मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं, कोई इस तरह उठा लेता है, ऐसे हाथों को ऐसे करके उठा लिया उसने, और हथेलियों का रुख जो है वह कानों की तरफ है, और कोई तो कान ही पकड़ लेता है, तो ये कोई तरीका ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है। सुन्नत के मुताबिक यह है कि आदमी इस तरह हाथ उठाए, जब इस तरह हाथ उठा लिया तो उसका मतलब भी समझो, उस हाथ उठाने का मतलब यह है कि मैंने नमाज के अलावा हर दूसरी चीज से मैंने हाथ उठा लिए हैं, यानी अब मैं किसी और काम में मशगूल नहीं होऊंगा सिवाय नमाज के, दस्तबरदार हो गया, उर्दू में ये लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, दस्तबरदार, किसी चीज से दस्तबरदार हो गया, यानी उसको उसकी जिम्मेदारी उसने अपने हटा ली। तो हाथ उठाने के माना है दस्तबरदार हो जाना, यानी हर दूसरी चीज से अपने आप को फारिग कर लेना, यह है हाथ उठाने के बाद। और उसी के साथ कहा गया अल्लाहु अकबर, तो अल्लाहु अकबर कहने का मकसद यह है कि भाई चूंकि बारी ताला की जात वो सारी कायनात में सबसे बड़ी जात है, लिहाजा अब मैं अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ मुतवज्जे हो रहा हूं और उसकी किबरियाई का ऐलान कर रहा हूं, उसकी बड़ाई का ऐलान कर रहा हूं कि उससे बड़ी कोई चीज नहीं, लिहाजा अब मैं नमाज के अंदर मशगूल होऊंगा और हर दूसरी चीज से अपने आप को दस्तबरदार कर लूंगा, सिर्फ बारी ताला की जात जो सबसे बड़ी है उसकी तरफ मैं मुतवज्जे हूं। ये काम करें, ये खुजू का पहला हिस्सा है। फिर जब खड़ा हो तो किबला रूह हो, और किबला रूह होने के साथ इस तरह खड़ा हो कि ढीला ढाला नहीं, कि एक पांव जो है वो उसका घुटना बड़ा हुआ है और एक का सीधा है, इस तरह खड़ा होना ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है, खुजू नहीं। खुजू का तकाजा यह है कि दोनों पांव सीधे हों, दोनों पांव सीधे हों, और गर्दन इस तरह खम हो कि निगाह सजदे की जगह पर रहे, गर्दन में इतना खम किया जाए कि निगाह सजदे की जगह पर हो, आगे इधर उधर, सामने इधर उधर देखना, सामने देखना ऐसा नहीं, बल्कि नीचे निगाह, निगाह नीची हो, गर्दन सिर्फ इतनी झुकी हुई हो कि जिससे निगाह जमीन पर सजदे की जगह पड़ रही हो। बहुत ज्यादा झुका लेना कि थोड़ी जो है वो सीने से मिल जाए, ये भी मकरूह है। बाज लोग यूं समझते हैं कि भाई खुजू खुशू का एक तकाजा ये है कि जितना गर्दन नीचे करोगे उतना ही खुजू खुशू ज्यादा होगा, ये बात सही नहीं। गर्दन को बहुत झुकाकर थोड़ी को सीने से मिला देना, इसमें कराहत है। बल्कि सीधा खड़ा हो आदमी और सिर्फ इतनी झुकी हुई गर्दन के नमाज सीन सजदे की जगह बनेगा। अब देखो ये पहला कदम है खुजू व खुशू हासिल करने का। अगर आदमी जाके अल्लाह अकबर करके खड़ा हो गया और देख रहा है सामने, तो खुजू व खुशू हासिल नहीं होगा। अगर वो जाके खड़ा तो हो गया लेकिन उसकी निगाहें सामने वाली चीजों के ऊपर पड़ रही हैं, तो ये खुजू व खुशू के मुनाफी है, उस खुजू व खुशू के खिलाफ है। लिहाजा बस इतनी गर्दन झुकाई जाए कि जिससे वो जमीन सजदे वाली जमीन नजर आ जाए। बस फिर उसके बाद कमर सीधी हो, सीधी इल्ला है कि किसी को उज्र हो अलग बात है, कमर सीधी हो। और उसके बाद जब रुकू में जाए तो रुकू में जाते वक्त, हाँ इसमें हाथ जो हैं वो नाफ के नीचे बंधे हुए हों और एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ा हुआ हो। बाद लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये तरीका औरतों का है, मर्दों का नहीं है कि हाथ पे हाथ रख दिया इस तरह, बल्कि हाथ को इस तरह पकड़कर तीन उंगलियां कोहनी के ऊपर जाएं और अंगूठे और छोटी उंगली से दायरा बनाकर उसको पकड़ लें, इस तरह खड़े हों। एक दूसरे के ऐसे हाथ रख के खड़े हो गए तो ये सुन्नत के मुताबिक ना हुआ, खुजू भी ना हुआ। जब रुकू में जाएं तो रुकू के अंदर पूरी तरह झुक जाएं, सिर्फ थोड़ा झुकना काफी नहीं है, बल्कि इस तरह झुक जाएं कि कमर सीधी हो जाए, कमर सीधी हो जाए। मामूली सा खम अगर किसी आदमी की के अंदाज जिस्मानी अंदाजी ऐसा है कि मामूली खम रहता है वो माफ है, लेकिन सीधा होना चाहिए। और इसकी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरी अल्फाज में तलकीन फरमाई है कि पूरा रुकू जो है वो पूरी तरह कमर को झुकने के बाद सीधा कर ले, सिर्फ थोड़ा सा झुका देना ये काफी नहीं है, बल्कि अगर सिर्फ थोड़ा सा झुकाया तो बाद सूरतों में नमाज भी नहीं होगी, बल्कि पूरा झुकाए और कमर सीधी हो जाए और उसमें फिर सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम तीन मर्तबा या पांच मर्तबा या सात मर्तबा जितना तौफीक हो वो कहे। उस वक्त तक रुकू से न उठे जब तक के कमर सीधी ना हो गई हो, और फिर जब खड़ा होगा सब अल्लाह लिमन हमदा हमदा कहने के लिए तो फिर कमर सीधी हो गई हो। ये भी वाजिब है कि कमर को सीधा कर ले। यानी ये जो बाद औकात लोग जल्दी में नमाज पढ़ते हैं तो थोड़ा सा झुके पूरी कमर सीधी नहीं हुई और फिर उठा लिया और उठाकर भी सीधे नहीं हुए, पूरी तरह सजदे में चले गए। इससे बाद औकात नमाज नहीं होती, नमाज नहीं होती के माना नमाज वाजिबुल इआदा होती है, उसको दोहराना वाजिब हो जाता है। तो आदमी रुकू के अंदर पूरा कमर सीधी करे और जब खड़ा हो तो फिर खड़े होकर बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, कमर में कोई खम, कमर में कोई झुकाव बाकी न रहे। उस वक्त सबे अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहे। रब्बना लकल हम्द भी कह सकते हैं, रब्बना वलकल हम्द भी कह सकते हैं, अल्लाहुम रब्बना वलकल हम्द भी कह सकते हैं। तीनों कलिमात मुमकिन हैं और तीनों साबित हैं। खड़े हो गए तो इतना खड़ा हो कि थोड़ा इत्मीनान हो जाए। बल्कि हदीस में रसूल करीम सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये बयान फरमाया गया है कि आप रुकू से जब खड़े होते थे तो तकरीबन उतनी ही देर खड़े रहते थे जितनी देर आपने रुकू में गुजारी। यानी अगर आपने रुकू के अंदर सुभान रब्बिल अजीम 3 मर्तबा पढ़ा तो जितनी देर में सुभान रब्बिल अजीम 3 मर्तबा पढ़ा जाता है उतनी देर खड़े रहे, फौरन सजदे में नहीं जाते थे बल्कि थोड़ी देर खड़े रहते थे। और अगर 5 मर्तबा पढ़ा है सुभान रब्बिल अजीम तो तकरीबन उतना ही 5 मर्तबा कहने के बकदर खड़े रहना। ये सुन्नत आजकल मतरूक हो रही है, यहां तक के अइम्मा हजरात भी इसका पूरा ख्याल नहीं करते कि जब आदमी खड़ा हो रुकू से तो इतनी देर खड़ा रहना चाहिए, तकरीबन इतना जितना वो रुकू में जितना वक्त गुजरा है। यहां तक कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि अगर रुकू में आपने बहुत ज्यादा तस्बीहात पढ़ी, देर तक रुकू किया, तो जब खड़े होते थे तो इतनी देर खड़े होते थे कि सहाबे किराम फरमाते थे कि बाद औकात हमें ख्याल होता है कि आप भूल तो नहीं गए आगे सजदे में जाना। इतनी देर खड़े होते थे कि सहाबे किराम फरमाते हैं कि हमें ख्याल होता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सजदे में जाना भूल गए हों, इतनी देर खड़े होते थे जब तस्बीहात ज्यादा पड़ी गई हों। लिहाजा आदमी जब खड़ा हो तो फौरन सजदे में ना जाए खड़े होकर, बल्कि इतनी देर ठहरे जितनी देर वो रुकू में रहा या उसके लगभग करीब। यह है सही तरीका, यह खुजू है सारा। अगर इसमें कोई कमी हो रही है तो खुजू में कमी हो रही और उसके बाद जब सजदे में जाए तो सजदे में जाकर पेशानी टिकना भी जरूरी और नाक का टिकना भी जरूरी, पेशानी भी टेक टेके नाक भी, और वहां पर भी इत्मीनान के साथ सजदा इस तरह करे कि कमर वो ढलान के साथ सीधी हो जाए, यानी मुतमईन हो जाए इत्मीनान के साथ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बसा औकात हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने में रुकू में गए, बस एक इशारा हो गया रुकू का, कमर सीधी नहीं हुई और फिर खड़े हुए तो फौरन खड़े हो गए और खड़े होकर भी पूरी तरह इत्मीनान नहीं हुआ था कि झट सजदे में चले गए और बस एक पेशानी टिकाई और फिर फौरन सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला जल्दी जल्दी पढ़ के वो एकदम से फिर दूसरे वो कादे में आ गए। सजदे के बाद सजदे में होना ये चाहिए कि ये हाथ की उंगलियां बराबर हों, मिली हुई हों। ये समझ लो कि रुकू के अंदर जब आदमी घुटने पर हाथ पकड़ता है, घुटने को पकड़ता है हाथ का, तो उसमें उंगलियां फैली हुई होनी चाहिए ऐसे। फिर जब सजदे में जाता है तो उंगलियां मिली हुई हों और वो जमीन के ऊपर टिकी हुई हों और सजदे के अंदर सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला 3 मर्तबा 5 मर्तबा 7 मर्तबा जितना भी अल्लाह ताला तौफीक दे वो उतनी कहे। इस हालत में कहे कि इत्मीनान हो गया हो सजदे में जाकर, जल्दबाजी में सजदा ना करे बल्कि इत्मीनान हो गया हूं। चलो तीन मरतबा ही कह लो, लेकिन सजदे को सजदे की तरह अदा करो कि सजदे भी, पेशानी भी, नाक भी टिकी हुई हो और कमर जो है वो मुतवाजिन हो और पांव पांव पीछे खड़े हों इस तरह कि उनकी उंगलियां मोड़कर किबला रुख हो जाएं, दोनों पांव की उंगलियां किबला रुख हो जाएं। इसमें भी बड़ी गलती होती है कि बस औकात लोग जो हैं वो एक पांव पर दूसरा पांव रख लेते हैं या बिल्कुल खड़ा कर लेते हैं या उंगलियां जमीन पर टिकती ही नहीं सजदे में। सजदे में उंगलियों का जमीन पर टिकना और उनका रुख किबले की तरफ होना ये सुन्नत है और इसी से खुजू हासिल होता है। और अगर उंगलियां जमीन पर नहीं टिकी, पूरे सजदे में अगर एक मरतबा भी पांव की उंगलियां जमीन पर नहीं टिकी, पूरा सजदा इस तरह गुजर गया कि पांव खड़े हुए हैं, तो सजदा होगा ही नहीं, नमाज ही नहीं हो। लेकिन उसको टेकना, इस तरह टेकना कि उंगलियां क़िबला रुख हो जाएं, ये खुजू का एक लाजमी हिस्सा है। सजदे के बाद जब उठते हैं तो उसको कादा कहा जाता है, जलसा कहा जाता है। वो जो बैठे हैं उसमें भी वही कानून है जो रुकू से उठने का है कि बैठे इस तरह के कमर सीधी हो जाए, कमर सीधी हो जाए, ये नहीं कि बस जरा सीधे उठे और फिर फौरन दूसरा सीधे में चले गए। और यहां भी वही बात है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि जितनी देर आप सजदे में रहते थे उतनी ही देर जलसे में भी, तकरीबन मसलन तीन मरतबा अगर सुभान रब्बिल आला कहा तो उठने के बाद इतनी देर इंतजार फरमाते थे जितनी देर में आदमी सुभान रब्बिल आला कह सके। बल्कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यह था कि कुछ कलिमात भी फरमाते थे रुकू से खड़े होकर। हम तो सिर्फ इतना कह देते हैं रब्बना लकल हम्द, लेकिन आप रब्बना लकल हम्द के बाद ये भी फरमाते थे रब्बना लकल हम्दन, रब्बना लकल हम्द मिल अस्समावाति व मिल अर्ज व मिल अमा बैनहुमा व मिल अमा शित मिन शैइन बाद, ताकि खड़ा होना कुछ देर लगे। जलसे में जब आप बैठते थे सजदे के बाद, दो सजदों के दरमियान जब बैठते थे तो उस वक्त ये दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा स्तुरनी वजबुरनी वरफानी वाहदिनी वला तुज़िलनी, ये दुआ पढ़ते थे। आम तौर से ये कहा जाता है कि ये नवाफिल में पढ़नी चाहिए, यानी इमाम को ये कहा गया कि ये आम आदमी को भी, लेकिन अगर कोई पढ़े तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ताकि जो वक्फा है वो कौमे में खड़े होने का वक्फा और जलसे में बैठने का वक्फा सुन्नत के मुताबिक हो जाए, इस तरह करना चाहिए। यह मैंने रकत के शुरू से लेकर और फिर दोबारा सजदे में जाएगा तो वही बात जो पहले सजदे में थी वो यहां पर भी है। तो खुलासा ये कि नमाज ऐसी चीज नहीं है कि उसे एक बोझ समझकर जल्दी जल्दी निपटाया जाए। और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये जितने भी आदाब मैंने बताए हैं नमाज पढ़ने के, इन नमाज पढ़ने के आदाब पर अमल करने से कुछ ज्यादा वक्त खर्च नहीं होता, सिर्फ तवज्जो की बात, ज्यादा से ज्यादा एक मिनट ज्यादा लग जाएगा एक रकत में उस तरीके के मुकाबले में जिस तरीके में जल्दी जल्दबाजी में पढ़ी जाती है, एक मिनट ज्यादा लग जाए, दो मिनट लग जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, ये नमाज दीन का सुतून है, जब दीन का सुतून है तो इसमें दो मिनट ज्यादा खर्च करके उसको सही अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा करने का अगर फायदा हासिल हो जाए तो कोई घाटे का सौदा है कि दो मिनट ज्यादा लगा दिए लेकिन नमाज उस तरह पढ़ी जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये एक रकत, ये खुजू की बात कर रहा हूं। मैंने कहा था दो लफ्ज होते हैं, एक खुजू और एक खुशू। तो ये अब तक जो मैंने आपको तफसील बताई ये खुजू की है, खुजू का तरीका यह है। खुशू में क्या होता है इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो अगले जुमा में इंशाल्लाह अर्ज करूंगा, वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह ताला हमें अपने फजल व करम से नमाज को अल्लाह ताला अपनी मर्जी के मुताबिक और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना www.thisquran.com